छोटा सा आस्तिक अपनी माँ को गुस्से में घूरता हुआ कहता है, क्यों कर रही हो इतना मेकअप और किसके लिए पहने तुमने ये गहने? वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा, तुम क्यों उसके लिए इतना सज संवर रही हो? आस्तिक की माँ ने आस्तिक के हाथों को पकड़ते हुए कहा, नहीं आस्तिक, ऐसा नहीं कहते हैं। आज वो आ रहे हैं, उनके सामने ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मुझे सुंदर तो दिखाना होगा ना। उसके बाद सीमा खुद को आईने में निहारते हुए कहती है, अगर मैं सुंदर नहीं दिखूंगी तो वो फिर से मुझे छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए मेरा सुंदर दिखना जरूरी है आस्तिक। आस्तिक हैरान नजरों से अपनी माँ को देख रहा था। सीमा ने आस्तिक को देखते हुए बोला, आस्तिक ये तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले हैं, देखो तुम सब कितने गंदे नजर आ रहे हो, जल्दी जल्दी कपड़े बदलो। आस्तिक का चेहरा धीरे धीरे गुस्से में भड़क जाता है और वो एक नफरत के साथ बोल उठता है, बस करो माँ, वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा, वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है, अब मान लो इस बात को और बंद करो ये पागलपन। आस्तिक की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए और धीरे धीरे उसका रोना तेज हो गया। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाया और अपने चेहरे से उस मेकअप को हटाने लगी। उसे मेकअप लगाना नहीं आता था और ना ही हटाना आता था, इसीलिए वो जितना इसे हटाती वो इसके चेहरे पर उतना ही फैल जाता था। सीमा का पूरा चेहरा काले लाल पीले रंगों से सना हुआ था। अचानक आस्तिक अपनी पुरानी यादों से बाहर आता है और उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। वो जल्दी से अपनी भावनाओं को काबू करता है क्योंकि सामने कुणाल बैठा हुआ था। आस्तिक अपना चेहरा दूसरी तरफ करता और कहता है, कॉस्मेटिक ब्रांड की ओनरशिप के लिए एक मीटिंग अरेंज करो। कुणाल हाँ में कर हिलाता है और अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगता है। आस्तिक अपना चेहरा दूसरी तरफ किए हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपनी नजरें तीखी करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहा, माँ की ऐसी हालत देखने के बाद मैं अरुणिमा के लिए सॉफ्ट हार्टेड कैसे हो सकता हूँ? नहीं, मुझे उसे उसकी औकात पर ही रखना होगा। शायद पिछले एक महीने से मैं ये बात भूल गया था कि अरुणिमा से शादी करने का मेरा मकसद क्या है, पर कोई बात नहीं, आज अरुणिमा का व्यवहार इस बात का सबूत है कि वो आज भी मुझसे डरती है। आस्तिक के सर में फिर से अरुणिमा के बारे में सोच सोचकर दर्द होने लगता है, इसलिए वो जल्दी से एक टैबलेट निकालता है और उसे पानी के साथ घटक जाता है। उसके बाद आस्तिक कुणाल के साथ सीधे कॉस्मेटिक न्यू ब्रांड के नाम, डिजाइनिंग और प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस करने लगता है। ऐसे ही सारा दिन बीत गया था। आस्तिक को खाना खाने का भी समय नहीं मिला और ना ही कुणाल ने खाना खाने के बारे में सोचा। काम में वो दोनों इतने खो गए थे कि कब सुबह से शाम हुई पता ही नहीं चला। दो दिन बाद उनकी नई प्रोडक्ट टीम की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी, जो मार्केट में नई कॉस्मेटिक ब्रांड को लॉन्च करेगी और उनके कॉस्मेटिक ब्रांड में क्या क्या चीज शामिल होंगी और फिलहाल जो कंपनी मार्केट में है उनसे उन्हें किस तरीके से टक्कर लेनी है, इस बारे में बात होगी, इसलिए दो दिन बाद की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। आस्तिक और कुणाल अपने काम में अभी भी बिजी थे कि दरवाजे पर नॉक होता है। आस्तिक अंदर आने के लिए कहता है तो प्यून अंदर आते हुए कहता है, राजा साहब एक लेडी आपसे मिलने आई है। आस्तिक हैरानी से कहता है, कौन लेडी? प्यून ने कहा, सर पता नहीं, पहले कभी देखा नहीं, लेकिन अपना नाम आरती बता रही है। आरती का नाम सुनते ही आस्तिक के चेहरे पर सख्त भाव आ जाते हैं। वो सीधे होकर बैठता है और कुणाल से कहता है, जाओ और जाकर फाइल रेडी करो। कुणाल अपनी जगह से खड़ा होता है और यस सर कहता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आस्तिक प्यून से उस लेडी को अंदर भेजने के लिए कहता है। पांच मिनट बाद ही एक नॉर्मल कॉटन की साड़ी में एक 45 साल की महिला कमरे में दाखिल होती है। उसने नॉर्मल सी साड़ी के साथ अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे पर चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है। आस्तिक उस औरत को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आओ आरती बैठो। हालांकि वो औरत आस्तिक से उम्र में बड़ी थी, लेकिन फिर भी आस्तिक उसे नाम से बुला रहा था और उस महिला को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वो आस्तिक के सामने बैठती है और वो आस्तिक को सम्मान देते हुए उससे कहती है, शुक्रिया राजा साहब। आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो अपनी चेयर से अपने पीठ को चिकाते हुए अपनी कुर्सी को हल्का हल्का स्विंग करता है और आरती को देखते हुए कहता है, तो अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पति की? आरती ने कहा, मेहरबानी है आपकी राजा साहब, अगर आपने सही वक्त पर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मेरे पति का बचना मुश्किल था। वो तो आपने सही वक्त पर मुझे पैसे दे दिए, वरना मैं कहाँ जाती इतनी बड़ी रकम के लिए। और वो हॉस्पिटल आपके भाई का है तो उन लोगों ने भी मेरे पति की बहुत अच्छे से देखभाल की है और ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि 15 दिन या 1 महीने में मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें घर लेकर जा सकती हूँ। आस्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे खुशी हुई तुम्हारी मदद करने में, वैसे मदद तो तुमने भी मेरी की है। आस्तिक के ये कहते ही आरती के चेहरे पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो जल्दी से अपना बैग आगे करती है। वो अपने बैग में से एक छोटा सा पाउच निकालती है और उसे ओपन करते हुए उसमें से एक मास्क यानी कि नकली चेहरा बाहर निकालती है। आरती उसे मास्क को आस्तिक के सामने करते हुए कहती है, राजा साहब वैसे तो ये ठीक है, लेकिन शायद ये मेरे चेहरे पर ठीक से चिपक नहीं रहा है। आस्तिक उस मास्क को देखता और कहता है, ठीक है, मैं लेबोरेटरी में इस मास्क को दोबारा से भेजता हूँ और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करने के लिए कहता हूँ। आरती हाँ में सर हिलाती और कहती है, वो सब तो ठीक है राजा साहब, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मुझे इस औरत को डराने के लिए क्यों कहा, और ये चेहरा किसका है जो आपने मुझे लगाने के लिए दिया है? आस्तिक ने घूरते हुए आरती को देखा। वैसे तो आरती इस जुर्म में उसकी भागीदार थी, लेकिन फिर भी आस्तिक से इस तरीके से सवाल पूछना शायद उसे पसंद नहीं आया। उसने अपनी निगाहों से घूरते हुए आरती को देखा और कहा, तुम्हें इस सवाल के पैसे नहीं मिलेंगे, तो जिसके मिलेंगे उसी पर फोकस करो। और हाँ, तुम्हारी आवाज, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो याद रखना, तुम जिस आवाज का इस्तेमाल शारदा देवी को डराने के लिए कर रही हो, खबरदार जो उस आवाज को किसी और के सामने निकाला। तो आरती हाँ में सर हिलाती और कहती है, ठीक है राजा साहब, मैं ध्यान रखूंगी।